परंतु वस्तुतः यदि हम देखें तो वहां पर जो लड़ी के समान पुरिया हुआ कथा सूत्र है वह तो श्री कृष्ण का चरित्र ही है, जिसका गायन महाभारत के माध्यम से वेद व्यास ने किया। और जब हम भागवत को पढ़ते हैं वहां पर भी बहुत सी कथाएं हैं, आख्यायिकाएं हैं, पर यदि मूल स्वर किसी चरित्र के संबंध में है तो वह श्री कृष्ण के संबंध में है। अब इसीलिए प्रश्न उठा, एक व्यक्ति दो ग्रंथ लिखता है और दोनों ग्रंथों में जो नायक है वह एक ही व्यक्ति है, इसलिए बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ती है कि एक ही चरित्र पर एक ही व्यक्ति दो ग्रंथ क्यों लिखता है। इसका कारण यदि हम समझ लें तो हम यह समझ सकते हैं कि तुलसी के राम का वैशिष्ट्य क्या है या तुलसी की राम कथा का वैशिष्ट्य क्या है। अब जैसा हमने कहा कि वाल्मीकि ने भी राम कथा लिखी, तुलसी ने भी राम कथा लिखी, इन दोनों राम कथाओं का जो अंतर है उस अंतर की उपमा दी जा सकती है इस अंतर से, जो अंतर महाभारत और श्रीमद् भागवत का अंतर है। क्या अंतर है? आप पढ़ते हैं भागवत में उसकी रचना कैसे हुई, उसका इतिहास आप प्रारंभ में पढ़ते हैं कि एक दिन भगवान वेदव्यास सरस्वती नदी के तीर पर बैठे हैं, उनका चित्त खिन्न है, कुछ उदास से वे हैं। इतने में देवर्षि नारद वहां से गुजरते हैं, देखा भगवान वेद व्यास ने देवर्षि नारद को, वे उठ करके स्वागत करते हैं, अर्घ्य देते हैं, पाद्य देते हैं, आसन देते हैं बैठने के लिए, कुशल क्षेम प्रश्न इत्यादि सब हो जाता है। और फिर देवर्षि नारद एक प्रश्न करते हैं, कहते हैं महामते आज आपको मैं कुछ खिन्न चित्त देखता हूं, क्या बात है, क्या धर्म कार्य सब ठीक तो चले हैं आपके जीवन में, जो करणीय था मैं तो समझता हूं कि आपने वह सब करणीय किया है। इसके उत्तर में वेद व्यास कहते हैं कि देवर्षि जहां तक मैं समझता हूं मैंने किसी प्रकार का धर्म कार्य छोड़ा नहीं, समाज में धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, जन जन में धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए मैंने किसी प्रकार की कसर बाकी नहीं रखी है। आप तो जानते हैं कि मैंने ग्रंथों का प्रणयन किया है, परंतु फिर भी मैं जीवन में एक रिक्तता का बोध कर रहा हूं, एक प्रकार की अशांति है जो मुझे साल रही है और मैं कुछ कारण समझ नहीं पा रहा हूं। वैसे तो आप जानते हैं देवर्षि कि मैंने ज्ञानियों के लिए ब्रह्म सूत्रों की रचना की है, पंडितों के लिए मैंने वेद का विभाजन और उनका विस्तार किया है, और सामान्य जनों के लिए मैंने महाभारत की रचना की है। और यह अत्यंत सत्य बात है कि उन्होंने तीन प्रकार के लोगों के लिए तीन ग्रंथ लिखे, जो ज्ञानी जन थे, जो विचार करते थे मनुष्य पर, मनुष्य का क्या संबंध है ईश्वर के साथ या ब्रह्म के साथ या सत्य के साथ या जगत के साथ या आत्मा क्या है, तो ज्ञानी जन जो इस प्रकार ज्ञान का चिंतन करते हैं उनके लिए तो उन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, और जो पंडित जन है उनके लिए उन्होंने वेदों का विभाजन किया, विस्तार किया। पहले वेद संग्रहित नहीं थे, बिखरे हुए थे, भिन्न भिन्न शाखाएं कहीं कहीं पर पड़ी हुई थी, नष्ट हो रही थी, तो यह भगवान वेद व्यास का परिश्रम था कि वे संकलित करते हैं, सुनियोजित और संबद्ध करते हैं, वेदों को चार भाग में बांट देते हैं और इस प्रकार से उनका विस्तार करते हैं। तो यह भी कार्य पंडितों के लिए किया, और सामान्य लोगों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। तब यह जब कहा कि इस प्रकार मैंने ये जो तीन ग्रंथ लिखे हैं देवर्षि, तो मैं यह मानता हूं कि इनके माध्यम से मैंने धर्म की ही प्रतिष्ठा करनी चाहिए है। और देखिए मेरा तो महाभारत के संबंध में एक ऐसा मत है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, जो कुछ आपको महाभारत में मिलेगा वही बात आपको दूसरे ग्रंथों में मिल सकती है, पर जो आपको महाभारत में नहीं मिलेगा वह फिर संसार में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। ऐसी जो बात इतनी दृढ़ता के साथ जो बात कही जा सके यह तो वेद व्यास ही करते हैं, और कहते हैं कि महाभारत में जो कुछ मैंने लिखा वह आपको भले दूसरे ग्रंथों में प्राप्त हो पर जो महाभारत में नहीं है वह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतनी दृढ़ता है। और फिर भी कहते हैं कि मैंने ऐसे सब ग्रंथ लिखे, जीवन में अशांति का भोग कर रहा हूं, पता नहीं चलता है ऐसी कौन सी व्यथा है, कौन सा अभाव है जो मुझे साल रहा है। तब हंस करके वेद व्यास से कहते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं कि महामते मैंने तो बात आपकी सुन ली, पर जानते हैं मेरा ऐसा मत है भगवतानुदित प्रायम
यशो भगवतो मलम, ये आपने ये सब धर्म की प्रतिष्ठा तो की, ग्रंथों में नीति परक वाक्यों को लिख करके विचार प्रस्तुत करके आपने समाज में धर्म की प्रतिष्ठा तो की, पर मैं ऐसा मानता हूं कि हृदय में संतोष जिससे आता है वैसा भगवान के गुणों का गायन आपने नहीं किया है। मैं यह चाहता हूं कि आप भगवान के गुणों का गायन करें। परमात्मनः कलाम अधिगम्यताम, आप ईश्वर की कलाओं का वर्णन कीजिए, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन कीजिए। और वे कह देते हैं त्वमप्यदभ्यश्रुत विश्रुतम विभोः समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम् आख्याय दुःखे मुहुरर्दितात्मनाम संक्लेश निर्वाणम संतु नान्यथा। भगवान के गुण उनकी लीलाएं इतनी मीठी हैं महामते कि उनका गायन ये जो आत्मज्ञानी ये आत्मक्रीड जो महापुरुष हैं वे भी गाया करते हैं आनंद के लिए, जीवन में संतोष की अनुभूति करने के लिए। तो मैं यह कहता हूं कि केवल प्रभु का गायन ही, उनकी लीला का गायन ही जीव के दुखों को मेट सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। आपने भगवान की लीला का गायन नहीं किया, इसीलिए अपने जीवन में अशांति का अनुभव कर रहे हैं। सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ वेद व्यास को। उन्होंने कहा आप यह कैसी बात कहते हैं देवर्षे, क्या मैंने श्री कृष्ण के चरित्र का गायन महाभारत में नहीं किया है? तब हंस करके देवर्षि नारद ने कहा आपने चरित्र का गायन तो किया है पर आपने लीला का गायन नहीं किया। आप लीला का गायन कीजिए। चरित्र में इतिहास की दृष्टि है, चरित्र में जब वर्णन होता है तो वहां पर मनुष्य पक्ष प्रधान होता है और लीला में वहां पर भगवत्ता प्रधान होती है। और आप पढ़ते हैं कि जब इस प्रकार का संकेत और आदेश देवर्षि नारद ने वेद व्यास को दिया तब उसके बाद वे श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं और रचना करके परम तोष को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में जो कमी थी जो अभाव था वह सारा का सारा अभाव निकल जाता है और परम शांति के अधिकारी बनते हैं। यह भागवत ही हमारे समक्ष रखता है। अब यह कैसी विचित्र बात है कि चरित्र का गायन और लीला का गायन। अब महाभारत में क्या है? महाभारत में वहां पर श्री कृष्ण को भगवान के रूप में ब्रह्म के रूप में देखा तो गया है। वहां पर वेद व्यास बीच बीच में यह कहेंगे कि ये साक्षात वही परात्पर पुरुष हैं, पर मानो दबे हुए कंठ से, मानो कंठ खुल नहीं रहा है। भगवत्ता की बात तो करते हैं पर उसे दबा देते हैं। श्री कृष्ण के जीवन का जो मनुष्य पक्ष है वही महाभारत में हमें अधिक दिखाई देता है और श्रीमद् भागवत में वहां पर श्री कृष्ण मनुष्य हैं ही नहीं, वे साक्षात ब्रह्म हैं। ब्रह्म ही नर तन धारण करके लीला कर रहे हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए वे ही प्रभु या नर रूप धारण करते हैं और लीला करते हैं। यह दृष्टिकोण श्रीमद् भागवत का। एक गोपी अत्यंत विभला हो गई है, अंग प्रत्यंग उसके पुलकित तो हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है, कुछ बोलना चाहती है अपनी सखियों को परंतु कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि उसका तो गला भर आया है और इसके लिए वह रुद्ध कंठ होकर के कुछ बोल भी नहीं पाती है। सखियों ने देखा और पूछा क्यों री, यह तुझे क्या हो गया? तू तो बावली के समान हो गई है। अरे कुछ बता, तूने कुछ देख लिया है? तुझे बड़ा आनंद हो रहा है ऐसा लगता है, तेरे रोए खड़े हो गए हैं, तेरे शरीर में गात्र में पुलक हो रही है और ऐसा लग रहा है कि तुझे किसी महत आनंद की अनुभूति हो रही है। बोल तो सही, तूने ऐसा क्या देखा री सखी कि तुझे इतना आनंद हो रहा है? वह सखी बोल नहीं पाती, उसका वह रुद्ध कंठ अभी भी रुद्ध है, वह खुला नहीं है। जब धीरे धीरे थोड़ा भाव का शमन होता है वह सखी कहती है क्या बताऊं, मैंने कौतुक देखा और जब से मैंने वह कौतुक देखा है सच कहती हूं सखियों मेरी यह दशा हो गई है, आनंद के मारे मैं मानो उच्छलित तो होती जा रही हूं। अरे कहां वह कौतुक देखा, हम भी क्या वह कौतुक नहीं देख सकती, चल उस स्थान पर हमें ले जा जहां तूने वह कौतुक देखा है। और बोल तो सही, तूने कौन सा कौतुक देखा री सखी? तो सखी कहती भावपूर्ण स्वर में कहती है श्री सखी कौतुकमेकम नंद प्रांगणे मया दृष्टम धूल धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। मैंने नंद बाबा के आंगन में एक कौतुक देखा री सखी, क्या कौतुक देखा कि वेदांत का सिद्धांत
अपने शरीर में धूल रमा करके नाच रहा था, यह हमने नंद बाबा के आंगन में देखा। और जब से मैंने यह कौतुक देखा है तब से मेरी यह दशा हो गई है। गोपी की दृष्टि क्या है? वह कन्हैया नंद का बालक नहीं है, वह गोपनंदन नहीं है, वह साक्षात तो वही वेदांत तत्व है, वही ब्रह्म है जो अपने अंगों में भस्म रमा करके नाच रहा है। कैसी अद्भुत दृष्टि है कि जहां पर केवल ब्रह्मता का भाव, केवल जहां पर भगवत्ता है, कृष्ण ईश्वर छोड़ करके दूसरे नहीं है, नहीं है। जिस समय रास शुरू होता है और जब देखते हैं भगवान अंतर्यामी, भगवान देखते हैं कि गोपियों के हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया है, वे अंतर्हित हो जाते हैं। अब तब गोपियां रुदन करती हैं और रुदन करते हुए क्या कहती हैं, हम सभी पढ़ते हैं, अद्भुत है वह भाव जहां पर गोपियां रुदन करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं, कहती हैं अजीब बात है, क्या तुम ऐसा समझते हो कि हम तुम्हें नंद नंदन समझती हैं, गोप बालक समझती हैं? अरे नहीं कन्हैया, हम तुम्हें गोप बालक नहीं समझती, विठल सारथी तो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम कुले, वहां पर तुम्हें यही कहती है कन्हैया, हम तुम्हें नंद बालक नहीं मानती, हम ऐसा नहीं मानती कि तुम यशोदा के पुत्र हो, नखलु, जहां पर वे कहती हैं नखलु गोप नंद नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृग विघन सार्थी तो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम कुले, अरे तुम तो अंतर्यामी हो, समस्त देहियों में विराजमान तुम अंतर्यामी हो, तुमसे ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी प्रभो धरती का भार हरने के लिए अवतीर्ण हो, तो तुमने प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्वीकार करके तुम सात्वत कुल में आए हो, यदुवंश में आए हो, प्रभो हम तुम्हें इन्हीं दृष्टियों से देखती हैं। कन्हैया क्या हम तुम्हें नंद नंदन मानती हैं? अद्भुत यह जो दृष्टि है गोपियों की, या भागवत में श्री कृष्ण के प्रति जो दृष्टि है, वह दृष्टि कैसी, साक्षात वही ब्रह्म। हम जो टीका टिप्पणी करते हैं गोपियों के साथ कृष्ण के संबंध को लेकर के, इसलिए करते हैं कि हमारे भीतर में सारे ये दुर्गुण भरे हुए हैं और हम कभी भागवत को पूरा पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। जिस दृष्टि से भागवत को पढ़ना चाहिए उस दृष्टि से कभी भागवत को पढ़ने की चेष्टा नहीं करते। इसीलिए श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, जो भक्त थे भागवत के अनुरागी भक्त थे, उनसे वे कहते थे देखो यह भागवत अद्भुत है, यह साधना भी है साध्य भी है। वे हरदम कहा करते थे कि देखो यह कामनाश के लिए साधना भी है और यह कामनाश रूपी साध्य फल की प्राप्ति भी कराने वाला यह भागवत है, पर किस दृष्टि से भागवत का पाठ करना चाहिए यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। जब लोग श्रीमती राधा के तत्व की चर्चा करते, राधिका के तत्व के संबंध में विचार विमर्श करते, श्री रामकृष्ण ने एक दिन कह दिया, एक दिन कोई ऐसा ही व्यक्ति था, कोई भागवती पंडित था, जो राधिका तत्व के संबंध में कह रहा था, कृष्ण और गोपियों के संबंध में कह रहा था, श्री रामकृष्ण उसकी बात को सुन नहीं सके, उन्हें बस पर मानो सहन तक नहीं हुआ और उन्होंने कह दिया, अरे देखो जी तुम गोपी और कृष्ण की बात करते हो पर जानते हो यह जो श्रीमती राधा है उनके भाव को समझना जानते हो? जब तक कहते हैं वे बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, जब तक व्यक्ति कामगंध शून्य नहीं हो जाता तब तक श्रीमती के भाव को समझना कठिन ही नहीं असंभव है। यह बड़ी विलक्षण बात कह दी कि जब तक व्यक्ति कामगंध शून्य नहीं हो जाता तब तक श्रीमती के भाव को समझना कठिन ही नहीं असंभव है, और तुम चर्चा कर रहे हो, तुम श्रीमती के भाव को समझोगे? श्री रामकृष्ण का तात्पर्य क्या, कामगंध शून्य होना है तब गोपियों के भाव को समझा जा सकता है। भाई काम शून्य होना तो कह सकते थे, काम शून्य हुए बिना गोपियों के भाव को नहीं समझा जा सकता, इतना ही तो कहने से पर्याप्त होता। श्री रामकृष्ण कहते हैं काम गंध शून्य हुए बिना, इसका तात्पर्य क्या, बड़ा विलक्षण तात्पर्य है। आप एक कटोरी लें, उसमें लहसुन को घोल लें और उसके बाद जल में आप कटोरी को ढो डालें, अब यह कटोरी तो लहसुन शून्य हो गई, पर यदि आप नाक के पास ले जाएं तो वह लहसुन गंध शून्य नहीं हुई है, उसमें लहसुन की गंध आती रहेगी। और यदि आप उस कटोरी को लहसुन गंध शून्य करना चाहते हैं तो आग में तपाइए, तब कहीं जाकर के वह कटोरी लहसुन गंध शून्य होगी। इसी प्रकार यह काम शून्यता और काम गंध शून्यता की अवस्था है। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते हैं सावधान, पढ़ना है श्रीमद् भागवत को, साधक हो तो भाव लेकर के पढ़ो, जिससे तुम्हारे जीवन में काम गंध शून्यता उत्पन्न हो जाए, यह मान करके चलो कि इसके मानो इसका परिपालन करने से, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से ऐसी स्थिति जीवन में आ जाएगी जहां पर काम गंध शून्यता रहेगी, हम काम गंध शून्य हो जाएंगे। यदि यह दृष्टि रहेगी तब तो भागवत का पढ़ना सार्थक है और तब तो भागवत के लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। पर यदि यह दृष्टि नहीं रहे तो भागवत हमारे काम को ही तो बढ़ा देता है। कितनी सत्य बात कही है कि वहां पर हम श्री कृष्ण और गोपियों की लीला का वर्णन तो पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं भक्ति की दृष्टि से, हम पढ़ रहे हैं कि हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो जाए, और हम देखते हैं हमारे हृदय में काम का संचार हो रहा है। राम नहीं आ रहे हैं, हमारे हृदय में काम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। अब उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से भागवत को पढ़ना चाहिए वह दृष्टि हमारे पास है नहीं, और इसलिए हमारे जीवन में भक्ति नहीं आ पाती है, हमारे जीवन में कामना ही बढ़ती है, काम भाव ही प्रबल होता है। तो ये जो ग्रंथ है ये सबके क्या पढ़ने लायक है कि सभी लोग सभी कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं? अब एक इंजीनियरिंग की किताब है, कोई व्यक्ति कहे कि सबको इसके पढ़ने के अधिकारी हैं, क्या सबको पढ़ने के अधिकारी हैं? अरे वह जो इंजीनियर है, जो तज्ञ है, अरे जो बहुत चौथे वर्ष की किताब है तो 3 वर्ष तक जो इंजीनियरिंग पढ़ चुका है, अरे वही तो चौथे वर्ष की इंजीनियरिंग की किताब को पढ़ करके समझ सकता है। अरे अधिकारी सभी में ठीक है, सभी कोई पढ़ ले सकते हैं, केवल हर्फों को शब्दों को पढ़ लेने से तो तात्पर्य नहीं समझ में आता, प्रत्येक को पढ़ने की योग्यता चाहिए। पर यहां पर धर्म के क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि हम योग्य हैं, हम पात्रता रखते हैं, हम अधिकारी हैं इसके पढ़ने के। किस लिए? क्योंकि यह किताब 2 रुपए में छपी मिलती है और हमें शब्द ज्ञान है, और इसलिए हम सोचते हैं कि हम इसके पढ़ने के अधिकारी हैं। यहां पर शास्त्र इसीलिए कहता है तुम्हारे पास इतिहास दृष्टि है, अथवा वर्ष ही परमायु कही गई है, यह कैसी विचित्र बात है, और इसलिए यह सब कपोल काल्पनिक है। हम मान लेते हैं, पर हम यह मानते नहीं कि अरे यह जो मापदंड है भागवत में जो 14,000 या 30,000 या 10,000 वर्ष कहे गए हैं, उसके क्या तात्पर्य हैं? उसके एक भाव के संकेत हैं, भाव के संकेतों को ग्रहण करते हुए उसे पढ़ना है, और जिसके भीतर में यह पात्रता है कि वह भाव के संकेतों को समझ सकता है वह उस ग्रंथ को पढ़े, बाकी अगर पढ़ेगा तो नहीं समझ सकेगा, और फिर कहने लगेगा कि मूल जलूल ग्रंथ है, कल्पना है, इस प्रकार की बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ लिखा, जो रामकथा हमारे समक्ष लिखी, वह भाव की दृष्टि से लिखी कि वहां पर श्री राम साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, इसका विवेचन वे करते हैं, और कहीं पर उनको अपने राम में मानव मनुष्यता नहीं दिखाई देती, इस पर विवेचन करेंगे। वह जो मनुष्य पक्ष है वह मनुष्य पक्ष वे देखना नहीं चाहते, वे दिव्यता के भाव से, ब्रह्मत्व के भाव से उसको ढांक देना चाहते हैं। यह तुलसी की वह दृष्टि है। क्यों उन्होंने ऐसा किया? ऐसा लगता है कि सामान्य दृष्टि से जब देखते हैं श्री राम के चरित्र पर, जब हम विचार करते हैं या श्री राम की लीला ही देखते हैं, जैसे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लगता है कि अरे ये तो मनुष्य जीवन की कमजोरियां श्री राम में भी दिखाई देती हैं, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। अगर हम इतिहास दृष्टि से पढ़ें तब तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तब तो कुछ आएगा नहीं हाथ में, पर यदि हम भाव दृष्टि से पढ़ें तो वह जो समस्याएं, वे जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, उन प्रश्नों का समाधान हम कर ले सकते हैं, उन समस्याओं की मीमांसा हो सकती है। तो तुलसी ने यह मीमांसा किस प्रकार से की हम देखेंगे। तो मैंने एक बात आपके समक्ष रख दी कि यह जो वाल्मीकि ने अपने राम को देखा है इतिहास की दृष्टि से देखा है, उन्होंने भी राम के ब्रह्मत्व को स्वीकार किया है। हम देखेंगे जब हम राम पढ़ते हैं वाल्मीकि की रामायण को, स्थान स्थान पर उन्होंने कहा है कि श्री राम ब्रह्म है, परंतु दबे कंठ से, मानो उस बात को वे अधिक प्रचारित नहीं करना चाहते, मानो वाल्मीकि उनके मनुष्य पक्ष को ही उजागर करना पसंद करते हैं, इसलिए उनका जो मनुष्य पक्ष है, चरित्र पक्ष है, यह चरित्र पक्ष ही अधिक उजागर है रामायण पर। रामचरितमानस में जो राम कथा तुलसी ने लिखी, वहां पर भावदृष्टि से लिखी गई कथा, और वहां पर श्री राम के ब्रह्मत्व का प्रकाशन, यह अंतर आप नोट कर लीजिए, यह दोनों का अंतर है। तो तुलसी ने इस दृष्टि से रामचरितमानस का प्रणयन किया कि श्री राम साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। और दूसरी बात और देख लीजिए, यह जो 2 दृष्टियां आई, उन 2 दृष्टियों का अंतर क्या हुआ? एक तो हम कह सकते हैं, क्या तुलसी जी आप इतिहास की बात को भाव में ले आते हैं, तो भाव में ले आकर के आप श्री राम को ईश्वर बना देते हैं, तो ईश्वर बना करके तो आप उन्हें हमसे बहुत दूर कर देते हैं। एक मनुष्य मनुष्य के करीब होता है। वाल्मीकि जी ने श्री राम को मनुष्य माना है, तो वहां पर श्री राम मानो करीब हैं, पर आप तो उन्हें ईश्वर बना देते हैं, ब्रह्म बना देते हैं, अरे हमसे तो वे बहुत दूर हो जाते हैं। तुलसी कहते हैं गलत बात, बिल्कुल इसका उल्टा करने के लिए मैंने श्री राम को ब्रह्म बनाया है, ईश्वर बनाया है। अरे वे केवल यदि इतिहास के पुरुष होते तब तो वे 7000 साल पीछे चले जाते, वे भाव के पुरुष होकर के खड़े हैं, इसलिए तुम्हारा हृदय ही अयोध्या धाम बन सकता है और इसी क्षण त्रेता युग प्रकट हो सकता है और तुम्हारे हृदय में आकर के राम विराजित तो हो सकते हैं, ताकि तुम श्री राम कृष्ण श्री राम से दूरी का अनुभव न करो। इसलिए तो मैंने उन्हें मनुष्य से उठा करके ब्रह्म बना दिया है, ईश्वर बना दिया है। और इस दृष्टि से वे अपनी इस कथा की रचना करते हैं। आप देखिए दोनों कथाओं की रचना कैसे हुई, कि वाल्मीकि ने राम कथा की रचना कैसे की और तुलसी ने राम कथा की रचना कैसे की। आप पढ़ते हैं वाल्मीकि पहले एक डाकू के रूप में जाने जाते थे, उनका नाम था रत्नाकर। एक रत्नाकर था, यह बटमार था, बटोहियों को लूट लेता था। यह कथा हम पढ़ते हैं पुराणों में पढ़ते हैं, उनके मानो पूर्व मान इतिहास की बात। अब ऐसा पढ़ते हैं कि एक दिन देवर्षि नारद जा रहे थे रास्ते से, अचानक ये पकड़ लेते हैं, रत्नाकर ने पकड़ लिया और कहा जो कुछ तुम्हारे पास है सो दे दो। अब देवर्षि के पास क्या था, नारद के पास तो वह तंबूरा था। उन्होंने कहा कि बस मैं यही तो मेरे पास है, दे दो। कहा कि नहीं, ये साधु लोग बहुत धनवान होते हैं, पैसा कई जगह पर छिपा करके रखते हैं, तो तुम्हारे पास जो है सो तो तुम मुझे दे दो, ऐसे कई साधुओं से मुझे धन मिला है, बातें ना बनाओ। और तब नारद ने कहा कि अरे रत्नाकर, तू चाहता है धन, मेरे पास एक धन है, भगवान के नाम का धन है, यह नाम धनी मैं दुनिया को बांटता हूं, अगर तू चाहता है तो यह नाम धन तुझे दे सकता हूं, बातें मत बनाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो, नहीं तो अभी तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। नारद ने एक बात कही, अच्छा रत्नाकर कि तू मुझे मार लेना, मेरे पास है तो नहीं कोई धन, और तू मुझे मार लेना चाहता है तो मार ले, पर एक प्रश्न मैं तुझसे करता हूं, तू बता यह जो तू इतना पाप संचित करता है किसके लिए करता है, यह प्रश्न तुम किस लिए पूछते हो ना, एक बार तू विचार कर मन में, इतना पाप कर्म तू करता है, कितने बटोहियों को मार डालता है, तू बटमारी करता है, इतना पाप कर्म कर रहा है किसके लिए करता है, क्यों मुझे अपने कुटुंब का पालन नहीं करना है, अपने कुटुंब का पालन करना है, मेरे वृद्ध पिता हैं, वृद्धा माता हैं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, इनके लिए मैं यह करता हूं। अच्छा देखो, यह जो तुम इस बटमारी से, डाके से, चोरी से, यह जो तुम डकैती करते हो, उससे जो धन मिलता है उस धन में तो ये सारे के सारे भागी हैं, पर जो तुम पाप कमा रहे हो उस पाप में भी क्या वे भागी होंगे, क्यों नहीं होंगे। रत्नाकर ने कहा, जब मेरे कमाए धन के वे भागी हैं तो मेरे कमाए पाप के भागी क्यों नहीं बनेंगे। रत्नाकर जाकर के देखो, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, जाकर के पूछा। अच्छा तुम भागना चाहते हो, क्या नहीं मैं भागना नहीं चाहता हूं, तुम मुझे बांध करके रख दो। और सचमुच रत्नाकर बांध देता है, वृक्ष से देवर्षि नारद को बांध देता है, कहता मैं अभी पूछ करके आया गया, पिताजी आप जानते हैं कि मैं किस प्रकार आप लोगों का पेट भरता हूं, नहीं तो बेटे तो सुनिए पिताजी, मैं बटमार हूं, मैं वहां पर वहां बटाईगिरी करता हूं। एकदम यही पिता ने सुना, कहा कुलंगार तू मेरी आंखों के सामने से दूर हट जा, अरे तुझे पैदा होते ही मर जाना उचित था। पर पिताजी वह तो अधीर हो गया, यह तो बताइए कि आप जिस प्रकार मेरे कमाए धन में भागीदार हैं उसी प्रकार क्या आप मेरे कमाए पाप में भी भागीदार नहीं होंगे। दूर निकल, चांद डाल कहेगा, तूने अपनी मां के कोख को कलंकित कर दिया। पिता भगा देते हैं, उदास होकर के मां के पास आया, कहा मां जानती हो मैं किस प्रकार तुम लोगों का पेट भरता हूं, नहीं तो बेटे तो सुनो मां, मैं बटमार हूं, मैं लोगों का जो सब कुछ है धन है मैं बलपूर्वक छीन लेता हूं और उन्हें मौत के घाट उतार देता हूं। नहीं बेटे, यह तो तुम अच्छा नहीं करते हो, यह तो बहुत गर्हित कर्म है, बेटा यह दुष्कर्म तुम त्याग दो। पर सुनो मां, अधीर होकर के उसने कहा, अच्छा जैसे मेरे कमाए धन में तुम लोग सब भागीदार हो, मेरे कमाए पाप में तुम लोग नहीं बनोगी। बेटे हम लोग तुम्हारे कमाए पाप में भागीदार क्यों बने, यह तो पुत्र का कर्तव्य होता है, कि बूढ़े माता पिता का पालन करें, हमने अपने दिनों में तेरा पालन किया, तुझे बड़ा कर दिया, हम तेरे पाप के भागीदार क्यों बनेंगे बेटे, हम उसमें भागीदार नहीं हो सकते। वह एकदम मानो गुस्से से कांपता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। तुम जानते हो किस प्रकार तुम लोगों का पेट भरता हूं, नहीं तो, तो सुनो, मैं बटमार हूं और मैं पाप किया करता हूं, लोगों को मौत के घाट उतार देता हूं, और यह जो मैं पाप कमा रहा हूं उसमें भी तुम लोगों को भागीदार बनना पड़ेगा, जैसे मेरे कमाए धन में तुम लोग भागीदार हो। पत्नी ने डांटते हुए कहा, तुम्हारे पाप में भागीदार हम बने, ब्याह करके क्यों लाए हो, जब लाए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा उत्तरदायित्व है, हमारा पालन पोषण करो, हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बनेंगे। और तब मानो आंखें खुल गई, मानो पैर के नीचे की धरती खिसक गई, वैसे ही उल्टा जल्दी से लौट करके आता है, आकर के देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ता है, बंधन खोल देता है, कहता है महाराज आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी, क्या हुआ, सारी बात बता दी। और तब कहता है कि मैं पता नहीं अब किस प्रकार से इस पाप से मुक्त हो सकता हूं। अत्यंत करुणा उनके हृदय में है नारद के, वे रत्नाकर को भगवान का नाम देते हैं, और रत्नाकर इतना पापी है कि वह नाम भी ठीक जप नहीं पाता। हम तो पढ़ते हैं ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वह मरा मरा ही जपता है, और जपते जपते उसका हृदय का कलुष धुल गया, और इतना वह तीव्र ध्यान में निमग्न हो गया कि दीमकों ने चारों तरफ बांबियां बना ली। बांबी को संस्कृत में कहते हैं वल्मी, और जिस समय ध्यान में रत्नाकर इतना तन्मय हो गया, तन की सुधि खो बैठा, समाधि में मग्न, दीमकों ने वल्मी बना लिए, आकाशवाणी होती है, उठो 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 रत्नाकर उठो, अब तुम्हारी देह शुद्ध हो गई है, तुम्हारा मन तपस्या से पूर्त हो गया है, अरे तुम ध्यान में इतने निमग्न हो गए कि इन दीमकों ने तुम्हारे चतुर्दिक वाल्मीकि बना लिए, फिर भी तुम्हें बोध नहीं हुआ, आज से संसार तुम्हें वाल्मीकि के नाम से जानेगा। और तब रत्नाकर वाल्मीकि बनकर के उठते हैं। उनके जीवन की यह कथा। एक दिन वे आ रहे हैं स्नान करके गंगा से, अचानक उनकी दृष्टि जाती है ऊपर आकाश में, एक क्रौंच युगल पक्षी आपस में क्रीड़ारत हैं, मुग्ध नेत्रों से देख रहे हैं महर्षि उधर उन दोनों पक्षियों की ओर, उनकी क्रीड़ा की ओर, और इतने में उन्होंने देखा कि कहीं से एक तीर सनसनाता हुआ आया, उसने नरक क्रौंच को विद्ध कर दिया, नरक क्रौंच फड़फड़ा करके नीचे गिर पड़ा, रुधिर की धार बह चली, और वह मादा क्रौंची उसके चतुर्दिक मंडरा करके विलाप करने लगी। थोड़ी देर में नर क्रौंच के प्राण पखेरु उड़ गए, और वह करुण चीत्कार करुण विलाप मादा क्रौंची का सुना, वाल्मीकि के हृदय की सारी करुणा शब्द बन करके झर उठती है, और वे कह उठते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमहि शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधीहि काममोहितम्। अरे बहेलिया, तेरा हृदय इतना पाषाण है, तो इतना जड़ है, तेरा हृदय पत्थर के समान है, अरे एक क्षण तो तेरा हाथ रुक जाता, इन पक्षियों को पीड़ा करने देता और फिर उन्हें मार लेता, पर तेरा हाथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। जा, मैं श्राप देता हूं कि तेरे हृदय को चिरकाल के लिए शांति प्राप्त न हो। कह तो दिया, पर अचानक वाल्मीकि को आश्चर्य हुआ, आज मेरे मुख से इस प्रकार की भाषा कैसे निकली, ऐसी भाषा तो मैंने कभी कही नहीं, यह जो भाषा निर्गत हुई है उसका क्या अर्थ है। जब वे चिंतन कर रहे हैं, पुनः एक आकाशवाणी होती है, कहती है, मुने यह भाषा परिशुद्ध भाषा है, परिष्कृत भाषा है, यह संस्कृत भाषा है, इसमें आपको एक महत् चरित्र की रचना करनी है, इसके लिए आपको यह भाषा मिली है। आकाशवाणी शांत हो गई। अब महर्षि वाल्मीकि चिंतन करते हैं कि किस महत् चरित्र की रचना करनी है, क्या करना है, वे कुछ नहीं जानते हैं। और तब एक दिन देवर्षि नारद उनके जीवन में आए, उनसे भेंट हुई। ये देवर्षि नारद भी बड़े अजीब हैं, सब जगह रहते हैं, सब काल में रहते हैं। तो देवर्षि नारद से भेंट हुई तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने हृदय की बात कही और कहा कि महाराज मुझे समझ में नहीं आता, यह वाणी इस प्रकार कहने लगी, यह देव भाषा है, संस्कृत भाषा है, इसमें महत् चरित्र की रचना करनी है। किस महत् चरित्र की रचना करूं, कौन है ऐसा महत् चरित्र आज जिसका गायन मुझे करना है। वे प्रश्न पूछते हैं। वाल्मीकि की रामायण प्रारंभ होती है, पहला श्लोक छोड़ दीजिए, दूसरे श्लोक से वहां पर वाल्मीकि का प्रश्न देवर्षि नारद से, तीन श्लोकों में प्रश्न है, कौन मस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यमान्यो दृढ़व्रतः, कि ऐसा कौन व्यक्ति है आज इस युग में, बताइए तो सही।